समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
शिक्षा समाज को सशक्त बनाने का आधार है। शिक्षक जिसके शिल्पकार हैं, आज 5 सितंबर को भारत अपने सभी शिक्षकों को नमन करने के लिए शिक्षक दिवस मना रहा है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम भी नमन करते हैं सभी गुरुजनों को जो ज्ञान रूपी प्रकाश से लोगों के पथ प्रदर्शक बनते हैं।
Yes, friends, happy Teachers Day to all the teachers who are the guiding light, who toil hard to educate the youth in their formative years. As everyone knows, we all know, without children, there is no future. Also, friends, a day for us, all of us, to think about those great teachers who taught us, the role they played in molding us in shape during those times when we needed them the most. So it is observed on this day, that is September 5 in our country, to commemorate the birth anniversary of philosopher, teacher, former president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan.
Ji, aap sun rahe hain Akashwani Gold par News Magazine program Aaj Savere. Aur aaj ke is ank ke saath main hoon Devendra Tripathi aur saath hain Subhadra Ramachandran. To jaisa ki har din hum aapke liye lekar aate hain tamam badi khabrein और साथ ही साथ महानगरों से जुड़ी खबरें, मौसम समाचार और आज के दिन जिन महान लोगों का जन्म हुआ या जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में भी हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कदम के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों की जेब में पैसा आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर कर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों कर स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को नवरात्रि के पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इस बार धनतेरस अधिक रौनक वाला होगा। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिवाली और छठ से पहले नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी सुधारों का डबल धमाका करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर बदलाव किए बिना हम अपने देश को आज के वैश्विक संदर्भ में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में पंच रत्न को शामिल किया है। ये रत्न हैं सरल कर प्रणाली, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, उपभोग और विकास को बढ़ावा, आसान व्यापार के माध्यम से निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन और विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना। जीएसटी परिषद ने बुधवार को कई वस्तुओं पर करों में कटौती की घोषणा की थी।
इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंच रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी।
Prime Minister Narendra Modi has said that teachers generally give homework to their students, but he wants to give one homework to teachers for a change, that is to lead campaigns along with their students to promote Swadeshi products and give an impetus to Make in India and Vocal for Local. In an interaction with National Teachers Awardees, Mr. Modi asked schools to celebrate such occasions as Swadeshi Day or Swadeshi Week, when students would bring local products from their homes and share their stories. Mr. Modi also encouraged the use of indigenous materials in art and craft classes and school celebrations to nurture a lasting sense of pride in Indian-made goods. He emphasized discussions on the origin, makers and national importance of Swadeshi products to foster deeper awareness. The Prime Minister said that there should be boards outside every house and shop of Har Ghar Swadeshi. The Prime Minister urged teachers to inspire students to understand that a nation dependent on others can never progress as rapidly as its true potential allows. He cited the example of India spending over 1 lakh crore rupees annually on edible oil imports.
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने कल बिहार के बोधगया में पवित्र महाबोधि मंदिर के दर्शन किए। श्री तोबगे ने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर बोधगया में पूजा अर्चना की। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया के जिलाधिकारी और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शशांक शुभंकर और अन्य अधिकारियों ने श्री तोबगे का स्वागत किया। मंदिर प्रबंध समिति की सचिव डॉ महाश्वेता महारथी ने प्रधानमंत्री को महाबोधि महाविहार के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। अपने आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस प्रतिष्ठित आध्यात्मिक विरासत स्थल से जुड़कर धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री तोबगे की यात्रा भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, मित्रता और आपसी सम्मान के चिरस्थायी बंधन को दर्शाती है तथा बोधगया की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान को और मजबूत करती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली आने से पहले गया और अयोध्या में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री तोबगे नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे।
Teachers Day is being celebrated throughout the country today. The day is celebrated on the birth anniversary of educationist and former president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. President Draupadi Murmu will confer the national awards to teachers at Vigyan Bhavan, New Delhi today. This prestigious annual award recognizes outstanding teachers whose dedication and commitment have elevated the quality of education and profoundly impacted the lives of their students. Prime Minister Narendra Modi interacted with the national awards winning teachers in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi lauded the natural respect Indian society holds for teachers, calling them a powerful force in nation building. He emphasized that honoring teachers is not merely a ritual, but a recognition of their lifelong dedication and impact.
26 पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने पर यूक्रेन में जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से सेना तैनात करने का आधिकारिक तौर पर संकल्प लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद ये घोषणा की। इसे कोलिशन ऑफ विलिंग कहा गया है। श्री मैक्रों ने कहा कि 26 देशों ने युद्ध विराम होने, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन में सेना तैनात करने या जमीन, समुद्र या हवाई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले श्री मैक्रों और अन्य यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमरीका के शांतिदूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की और संघर्ष के बाद दीर्घकालिक सैन्य समर्थन और अमरीका के समर्थन जारी रखने पर चर्चा की।
ईद मिलाद-उन-नबी, द बर्थ डे ऑफ प्रॉफेट हजरत मोहम्मद, is being celebrated with religious fervor in various parts of the country today. Milad Mehfils and Sirat conferences will be held, highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Milad processions are also being organized to mark the occasion. President Draupadi Murmu has greeted everyone on the occasion of Milad-un-Nabi. Keralites across the globe are celebrating Thiru Onam today. Thiru Onam is the biggest festival in Kerala and the entire state is in a festive mood for the last couple of days. We have more from our correspondent.
Onam, celebrated by Keralites as the homecoming of the legendary King Mahabali. This festival began 11 days ago with the Attam. Today marks Thiruvonam, the most significant day of the celebrations. The day started with Pookalam, traditional floral carpet, and will be highlighted by the grand feast served on plantain leaves known as Onasadhya. Major temples including Shabarimala, Guruvayur and Trikkakara are holding special pujas and Onasadhyas today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और अब कुछ खेल खबरें। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज साक्षी थोकचोम सनमाचा चानू और पवन बर्तवाल ने कल ब्रिटेन के लिवरपूल में अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए शानदार शुरुआत की। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्तवाल ने ब्राजील के माइकल डगलस ट्रिनडाडे को हराया, जबकि साक्षी ने महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की विक्टोरिया शेक्यूल को पराजित किया। दूसरी ओर थोकचाम चानू ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में डेनमार्क की डिट्टे फ्रास्टहोम को 4-1 से शिकस्त दी। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन, हितेश गुलिया और अभिनाश जामवाल सहित 10 भारतीय मुक्केबाजों को पहले राउंड में बाई मिली। भारत ने प्रतियोगिता में 20 सदस्यीय दल भेजा है।
In hockey, India registered a dominating 4-1 victory over Malaysia in the Super 4 stage match of the Asia Cup Championship at the Rajgir International Stadium. After facing an early setback in the first quarter, the hosts bounced back and established control over the game till last. Manpreet Singh, Subjeet Singh, Shilanand Lakra and Vivek Sagar Prasad scored one goal each. Skipper Harmanpreet Singh expressed satisfaction with the team's performance.
और श्रोताओं, आज सवेरे में अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरें जानने का। तो आपके पास सुभद्रा क्या खबरें हैं चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद?
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विथ न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द कॉम्प्रिहेंसिव मार्क लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी कोचिंग प्रोग्राम कंडक्टेड जॉइंटली बाय द ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर द नॉन मुदलवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विंग has been released. From the candidates included in the mock list, 225 candidates will be selected for Chennai full-time coaching, 100 candidates for Chennai part-time coaching, 100 candidates for Madurai full-time coaching, and 100 candidates for Coimbatore full-time coaching, making a total of 525 candidates. From among the candidates included in the mock list, those who have applied will be called for counselling based on their rank and in accordance with the reservation rules. Candidates have been asked to select their preferences through online registration from the 9th of September, after which counselling certificate verification will be done. Coaching classes will begin from the 3rd of next month. A special National Investigation Agency court in Chennai sentenced Nuruddin 39 of Yasarpadi, Chennai to 5 years in prison for counterfeit Indian currency. The judgment connects his role in Chennai's fake note racket with an international conspiracy directed by a serving officer of Pakistan Navy. Getting to Hyderabad now, Telangana state has sought immediate release of assistance of a total 16,732 crore rupees from the centre to carry out rehabilitation works in rain-hit areas. Deputy Chief Minister Bharti Vikramarka and Agriculture Minister T. Nageshwar Rao submitted a detailed memorandum to Union Home Minister Amit Shah in Delhi, seeking financial assistance from the centre. They informed that there were losses to a tune of over 11,713 crore rupees due to heavy rains in Khammam and other districts last year, and no special funds were released so far. The ministers explained that this year losses were estimated to over 5,000 crore rupees due to recent heavy rains. The ministers urged immediate release of assistance to carry out rehabilitation works in the affected areas. An official release stated that the ministers also requested that a central government team be deputed to visit the flood-affected areas and assess the damage firsthand. The release stated that 22 people have lost their lives and the loss of livestock, crop damage and house damages are still being assessed. It may be known that unprecedented rainfall occurred across Telangana. Severe floods in Kamareddy, Medak, Nirmal and Nizamabad districts, which led to large-scale devastation and damage to infrastructure during the last week of August. And Devendra, news from other cities?
Jee. दिल्ली में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 सूची में राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया ने चौथा, दिल्ली विश्वविद्यालय को पांचवां स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर JNU की कुलपति शांति श्री धूलिपड़ी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय समुदाय के लिए गर्व की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव समिति द्वारा बताया गया है कि डूसू चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार को केवल एक हलफनामा और 1,00,000 रुपए का जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। संभावित उम्मीदवार को विश्वविद्यालय या अपने खाते में राशि जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी डूसू चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राजकिशोर शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। राजधानी में लगातार तेज वर्षा के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे के कई इलाकों में पानी भर गया है। कल दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर विश्वकर्मा कॉलोनी जलमग्न हो गई, जिसके बाद राहत बचाव कार्य के लिए NDRF को तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि बाढ़ से राहत के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं और सरकार पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए है। और अब चलते हैं मुंबई, जहां शनिवार को अनंत चतुर्दशी के साथ गणेशोत्सव का समापन हो रहा है और लाखों भक्त शहर भर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल, होमगार्ड के जवान, त्वरित प्रतिक्रिया दल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ 17,600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। लाल बागचा राजा के लिए विशेष व्यवस्था के साथ ड्रोन और 11,000 CCTV कैमरे विसर्जन स्थलों की निगरानी करेंगे। BMC ने 2,100 से ज्यादा लाइफ गार्ड और 56 मोटरबोट तथा लगभग 300 कृत्रिम तालाब तैयार किए हैं। इस बीच बंबई उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक जलस्रोतों में पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाई समुदाय के स्वच्छ वायु और जल के मौलिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकती। और अब बात कोलकाता से जुड़ी खबर की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज कोलकाता के तारातला में भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ IJIRA के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। बाद में वे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन द्वारा आज 4 ACEMU सहित 6 नई इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट EMU लोकल ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बरसात इस बार कुछ जमकर हो रही है और आज भी संभावना मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की है। तापमान 23 और 33 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में भी बादल छाए रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। दिन में तापमान 32 डिग्री को पार कर सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
Yes, Chennai is expected to have partly cloudy sky in the morning hours, becoming generally cloudy towards afternoon or evening with the possibility of rain or thundershowers accompanied by squall or hail. The minimum temperature was 27 degrees Celsius, maximum will be around 35. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees Celsius and a maximum of 31 degrees Celsius.
और मौसम के बाद इतिहास के पन्नों पर एक नजर। आज 5 सितंबर है। आज के दिन ऐसा क्या कुछ हुआ जो इतिहास में दर्ज हुआ, आइए जानते हैं। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नौसेना का गठन किया था।
एंड द ईयर 1666 द ग्रेट फायर ऑफ लंदन वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल डिस्ट्रॉइंग द सिटी स्ट्रक्चर्स बट रिजल्टिंग इन फ्यू डेथ्स। And 1882, the first Labor Day parade and holiday were celebrated in New York City, United States. And the year 1958 marked the publication of Boris Pasternak's epic novel, Dr. Zhivago, in the United States.
जी.
This literary masterpiece would go on to capture the hearts of readers around the globe.
वर्ष 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, आज ही के दिन।
And in 1961, the United States embarked on a significant chapter in its nuclear history by initiating underground nuclear testing, a pivotal moment in the Cold War era. And in 1977, this day, NASA Voyager 1 was launched into space. This spacecraft was the farthest man-made object in space. And in the year 2000, Tuvalu, a group of 9 coral islands in the West Central Pacific, with a population of about 10,000, became the 189th member of the United Nations.
जी, वर्ष 2005 में मंडला एयरलाइंस का विमान 091 इंडोनेशिया में सुमात्रा के एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, आज ही के दिन, जिसके चलते उसमें सवार 104 लोगों के साथ आवासीय क्षेत्र के 39 लोगों की मौत हो गई थी।
एंड ऑल्सो एट अ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस इन वॉशिंगटन डीसी दिस डे इन 2001, साइंटिस्ट डिस्क्राइब्ड एन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लेयर्स दैट प्रोवाइडेड स्ट्रांग एविडेंस ऑफ द थियोराइज्ड ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। एंड ऑल्सो दिस डे 1909 दिस डे फिरोज एडुलजी पालिया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड स्लो स्पिनर बॉलर वाज बोर्न इन मुंबई।
जी, और अब करते हैं नमन उन महान विभूतियों को जिनके विचारों और कार्यों ने समाज का मार्गदर्शन किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे पथ प्रदर्शक होंगे। सबसे पहले नमन चिदंबरम पिल्लई को, जो तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक थे। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरल पर उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन में चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी का प्रचार किया और लोगों को विदेशी सरकार के विरुद्ध प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने चिदंबरम पिल्लई को देशद्रोही ठहराकर उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई थी।
And today is the birth anniversary of Anand Chandra Agarwala, a writer, poet, historian, translator and administrative officer from Sonitpur district of Assam, born this day in 1874. And he translated poems from English, which read like the original, and also wrote several narrative poems of absorbing interest based on folk tales.
जी. और आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं. 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने. राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के महान ज्ञाता, शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी, हिंदू विचारक थे. डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए. उन्हें एक आदर्श शिक्षक का सम्मान मिला और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया.
And it is said that he was a bridge builder between East and the West due to his great knowledge. And of course, he was famous for his work on comparative religion, comparative Eastern and Western philosophy, and also a teacher in India at the Oxford University in the United Kingdom. And of course, he was also a great teacher, and due to his commendable inputs in India's educational front, every year, that is today, that is the 5th of September, we celebrate Teachers Day.
जी, डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था श्रोताओं की शिक्षा के माध्यम से ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है. अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए. ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए. मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति है. जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो, उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वो अपने छात्रों को देते थे. वो अपनी शैली से दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी सरल, रोचक और प्रिय बनाते थे.
And friends, lead singer, pianist, songwriter for the mighty rock band The Queen, Freddie Mercury took birth this day in 1946. Freddie's real name was Farooq Balsara, born to Parsi parents, who had immigrated from India to Zanzibar, where his father worked as a clerk for the British government. As a child, Balsara was sent to a boarding school in Panchgani, Maharashtra. Of course, artistically inclined from an early age, Freddie formed a band there in which he played the piano. Later, the family moved to England to settle down there, and Queen, the rock band, took shape in the year 1973. And by the early 1980s, Queen had become an international phenomenon, drawing particular attention for its elaborately staged performances in enormous venues. His flamboyant showmanship and his vocal range made him one of the most dynamic frontmen. And today we remember this rock gem on his birth anniversary with this rock opera, Bohemian Rhapsody. Here goes a snatch of it.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
अनूठे व्यंग्यकार लेखक शरद जोशी की भी आज पुण्यतिथि है. अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अपनी पैनी लेखनी से सधे हुए अंदाज में व्यक्त किया. वो भारत के पहले व्यंग्यकार रहे जिन्होंने मुंबई में चकल्लस के मंच पर पहली बार 1968 में गद्य पढ़ा और किसी भी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए. शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था. क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधूली और उत्सव जैसी फिल्में लिखने वाले शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य पाठ किया. शरद जोशी के व्यंग्य में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है जो उन्हें जनप्रिय रचनाकार बनाता है. उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिक भी लिखे जिसमें शामिल हैं ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बतीसी और अनेक धारावाहिक जो दर्शकों में उस दौर में खूब पसंद किए गए।
And friends, this day, 2010, our tributes to former chairman of Atomic Energy Commission, Homi Nusarwanji Setna, an important figure in India's nuclear program, and he played a key role in India's first peaceful nuclear test on this on May 18, 1974, called the Smiling Buddha or Pokhran 1. He developed an interest in the greening of the Kutch Belt in 1980s or 1990s. Even after his retirement, he held many important positions and continued to contribute to the task of nation building. Setna also was awarded the Padma Bhushan and Padma Vibhushan for his work. And friends, death anniversary of excellent and acclaimed singer-songwriter Joe South, who built his own radio station as a little boy and received his first guitar as a Christmas present at age 11. At age 12, Joe had his own weekly radio show, playing guitar and singing country songs on WGST radio station. For a whole lot of artists, Joe played guitar, just to name a few: Marty Robbins, Aretha Franklin, Simon and Garfunkel, Fats Domino, and the legendary Bob Dylan. South further demonstrated his versatility as a songwriter, penning hit songs for his 1969 song, Games People Play, that had won 2 Grammy Awards. You're listening to it now. Let's hear it a little bit more.
Talking about you and me and the games people play now. Well, we make one another cry. Break a heart and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die. Except the other was to blame. Whoa,
And friends, rock and folk musician from Glasgow, Scotland, Al Stewart celebrates his birthday today. He found success during the British folk revival of the 60s. The only British artist from the 60s, London folk scene, to enjoy massive success in the States with his folky tales, mellow guitars. Enjoy his time passages.
Beginning to flow, I felt the beat of my mind.
भारतीय फिल्म जगत को मधुर सुरों से सजाने वाले महान संगीतकार सलिल चौधरी की भी आज पुण्यतिथि है। 19 नवंबर 1923 को पश्चिम बंगाल में जन्मे सलिल चौधरी के संगीतबद्ध गीत आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली और मलयालम फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया। सलिल चौधरी को एक प्रयोगवादी एवं प्रतिभाशाली संगीतकार के तौर पर जाना जाता है। इसकी झलक मधुमति, दो बीघा जमीन, आनंद और मेरे अपने जैसी फिल्मों के मधुर संगीत में भी दिखाई देती है। 1958 में बिमल राय की फिल्म मधुमति के लिए सलिल चौधरी सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1988 में उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1960 में आई फिल्म काबुलीवाला में मन्ना डे का गाया गीत ऐ मेरे प्यारे वतन आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है। उनके संगीत की झलक इन गीतों के माध्यम से आए लेते हैं।
तुझको बिल्कुल दुबारा तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान
बार यू भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आंख के पीछे मन दौड़ने लगता है।
विमान परिचारिका नीरजा भनोट को भी नमन। आज उनकी पुण्यतिथि है। 7 सितंबर 1963 को जन्मी नीरजा 5 सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। विमान अपहरण की घटना पर नीरजा भनोट पर 2016 में एक फिल्म बनी थी, उसी का गाना आप सुन रहे हैं। उन्हें मरने के बाद मरणोपरांत भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया, साथ ही पाकिस्तान और अमरीकी सरकार ने भी उन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया। और समय श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के साथ, इस श्रद्धांजलि के साथ समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। दीजिए अनुमति।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।